नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई अब राष्ट्रीय रक्षा नीति का हिस्सा बनी। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और उग्रवाद जैसे गंभीर खतरों से निपटने में देश के प्रयासों को मजबूत करने के लिए नए मल्टी एजेंसी सेंटर का शुभारंभ किया। सरकार की ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ देश का पक्ष रखने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजने की योजना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। इस्तांबुल में शांति वार्ता के बाद रूस और यूक्रेन बंदियों की सबसे बड़ी अदला बदली पर सहमत हुए। और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा दोहा में पहली डायमंड लीग मीट में खेलेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ अब भारत की लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं रहा, बल्कि ये राष्ट्रीय रक्षा नीति का हिस्सा बन गया है। गुजरात के भुज वायुसेना स्टेशन पर उन्होंने कहा कि भारत इस हाइब्रिड और छद्म युद्ध को जड़ से खत्म कर देगा। श्री सिंह ने कहा कि इस संघर्ष विराम का मतलब है कि भारत ने पाकिस्तान को उसके व्यवहार के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है।
साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे।
श्री सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने पर पुनर्विचार करने का भी अनुरोध किया, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर से अपने आतंकी ढांचे का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सटीक जानकारी और तीनों सशस्त्र बलों की अचूक मारक क्षमता का अनूठा प्रतीक है। नई दिल्ली में नए मल्टी एजेंसी सेंटर का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत को तीनों सशस्त्र सेनाओं, सीमा सुरक्षा बल और सभी सुरक्षा एजेंसियों पर गर्व है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह सेंटर वर्तमान जटिल और परस्पर राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सभी एजेंसियों के प्रयासों में तालमेल के लिए एकीकृत मंच प्रदान करेगा।
इस नए मल्टी एजेंसी सेंटर का निर्माण 500 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य विभिन्न खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना है, ताकि आतंकवाद और अन्य सुरक्षा खतरों से निपटने में तेजी लाई जा सके। केंद्र सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का यह हिस्सा है और यह केंद्र राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में अपना योगदान देगा। इस मल्टी एजेंसी सेंटर के माध्यम से डेटा विश्लेषण की गुणवत्ता और सुनिश्चित होगी, जिससे सटीक और समयबद्ध विश्लेषण संभव हो सकेगा। इसके अलावा यह केंद्र देश की मजबूत आंतरिक सुरक्षा ग्रिड के रूप में काम करेगा और आतंकवाद, उग्रवाद और साइबर हमलों जैसे गंभीर खतरों से निपटने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी होगी जब वो भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल आतंकवादियों को सौंप देगा। इनमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से भागकर पाकिस्तान में शरण लेने वाले आतंकवादी भी शामिल हैं। हैदराबाद में उन्होंने आतंकवाद से निपटने में पाकिस्तान के ढुलमुल रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प की पहली वानगी है।
प्रधानमंत्री स्वयं ये घोषणा किया है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। जब तक पाकिस्तान आतंकवादों को, पाकिस्तान के जितने भी अभी घूम रहे वो लोगों को भारत आतंकवाद का गतिविधि करके फिर पाकिस्तान के अंदर आज शरण ले रहे, पाकिस्तान के अंदर शेल्टर दे रहे, वैसे लोगों को भारत को हैंडओवर करना चाहिए, ऐसा भारत डिमांड है।
केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक शिष्टमंडल में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सांसद शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नई दिल्ली में बताया है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस कूटनीतिक पहल पर बात की है। बिहार सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए राज्य के सैन्य केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया। सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान का सम्मान करने के लिए देश भर में तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया में यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केरल में कालीकट, कन्नूर और पलक्कड़ में लोगों ने यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। हरियाणा के हिसार में कुरुक्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र देश के जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान के रूप में आकाशवाणी समाचार ने विशेष श्रृंखला शुरू की है। आज हम परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे को स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था।
कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने ऑपरेशन विजय के दौरान हमेशा आगे बढ़कर अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और जुबा टॉप जैसी कई चोटियों पर दोबारा कब्जा किया। उनके शब्द, अगर मेरे खून का सबूत देने से पहले मौत आती है तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को मार डालूंगा, उनके अटूट दृढ़ संकल्प और साहस की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी। 2 और 3 जुलाई 1999 की रात को खालुवार की ओर बढ़ने के दौरान जब उनकी पलटन अपने अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंची तो इसको आसपास की ऊंचाइयों से भारी गोलाबारी सामना करना पड़ा। कैप्टन पांडे ने निडरता से दुश्मन के ठिकाने पर हमला किया और अपनी गंभीर चोटों का परवाह किए बिना उन्होंने अपने जवानों को प्रेरित करते हुए हमले का नेतृत्व करना जारी रखा। कैप्टन पांडे के इस अनोखे साहसिक कार्य के परिणाम स्वरूप अंततः हालुवार पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि वह अपनी चोटों के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। अनुपम, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में संस्कृत के विद्वान स्वामी रामभद्राचार्य को 58वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। स्वामी रामभद्राचार्य और उर्दू शायर तथा गीतकार गुलजार को वर्ष 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था। गुलजार अस्वस्थ होने के कारण पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सके। राष्ट्रपति ने कहा कि साहित्य समाज को जोड़ता है और जागृत करता है।
साहित्य समाज को जोड़ता भी और जगाता भी है। 19वीं सदी के सामाजिक जागरण से लेकर 20वीं सदी में हमारी स्वाधीनता संग्राम से जन जन को जोड़ने में कवियों और रचनाकारों ने महानायकों की भूमिका निभाई है।
स्वामी रामभद्राचार्य ने पुरस्कार प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके साहित्यिक अवदान को मान्यता मिली है।
शब्द महाकाव्य तो सब लोग लिखते ही रहते हैं, पर संस्कृत में गीत महाकाव्य कोई नहीं था। मैंने गीत महाकाव्य दिया, गीत रामायण लिखकर, गद्य में भी संस्कृत में कोई महाकाव्य नहीं था। मैंने दशावतार चरितम लिखकर गद्य महाकाव्य भी दिया।
इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च की। श्री कुमारस्वामी ने कहा कि ये वेबसाइट समय पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सभी हितधारकों को सशक्त बनाएगी। ये वेबसाइट विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने पिछले वर्ष गुरदासपुर जिले में एक पुलिस थाने पर ग्रेनेड हमले से जुड़े एक मामले में आज पंजाब में प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी समूह से जुड़े 15 स्थानों पर तलाशी ली। एजेंसी ने कहा कि पंजाब के गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर और कपूरथला जिलों में तलाशी ली गई। निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी ने आज पटना में बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और अन्य अधिकारियों के साथ राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। निर्वाचन आयुक्त बिहार के 4 दिन के दौरे पर हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
जंगल पर्वत नदियों के पार नाल साला। अधिकार जनजातियों का हक।
नालसा का संवाद यूनिट आदिवासी समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी सहायता और उनके सभी अधिकारों को सुलभ बनाने में सहायता करेगी। कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस और यूक्रेन युद्ध बंदियों की सबसे बड़ी अदला बदली करने पर सहमत हो गए हैं। तुर्की के इस्तांबुल में आज दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच शांति वार्ता के दौरान 1000 युद्ध बंदियों की अदला बदली करने पर सहमत हुए हैं। ये 3 साल से अधिक समय में पहली प्रत्यक्ष शांति वार्ता है। यूक्रेन का नेतृत्व रक्षा मंत्री रुस्तम ओवरोव ने किया और रूस का नेतृत्व व्लादिमीर मेदिन्स्की ने किया। वार्ता में यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए। आयरलैंड ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आयरलैंड के विदेश मंत्री साइमन हैरिस ने संसद में कहा कि बलूचिस्तान की स्थिति बेहद चिंताजनक है। कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी कार्यकर्ताओं को जबरन हिरासत में लिए जाने की बढ़ती संख्या की निंदा की है। आधार आधारित लेन देन की कुल संख्या 150 अरब के आंकड़े को पार कर गई है। ये उपलब्धि आधार के व्यापक उपयोग और देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि सिर्फ अप्रैल में लगभग 210 करोड़ लेन देन किए गए। ये पिछले वर्ष की इसी महीने की तुलना में लगभग 8% अधिक है। रिजर्व बैंक ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए 2 प्रमुख बैंकों ड्यूस बैंक एजी और यस बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। ड्यूस बैंक एजी पर 50 लाख रुपए का और यस बैंक लिमिटेड पर करीब 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 82,330 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 42 अंक गिरकर 25,020 के स्तर पर बंद हुआ। भाला फेंक में वर्तमान विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा आज रात कतर के दोहा में डायमंड लीग प्रतियोगिता में खेलेंगे। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी पारुल चौधरी महिलाओं की 3000 मीटर स्टिपल चेज और गुलवीर सिंह पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में आज मैदान में उतरेंगे। अरुणाचल प्रदेश में सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला मालदीव से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3-0 की बढ़त बना ली है। एक अन्य सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने नेपाल को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान पूर्वोत्तर में गरज के साथ मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण में अगले 3 से 4 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में गरज के साथ वर्षा होने, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई अब राष्ट्रीय रक्षा नीति का हिस्सा बनी। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और उग्रवाद जैसे गंभीर खतरों से निपटने में देश के प्रयासों को मजबूत करने के लिए नए मल्टी एजेंसी सेंटर का शुभारंभ किया। सरकार की ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ देश का पक्ष रखने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजने की योजना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। इस्तांबुल में शांति वार्ता के बाद रूस और यूक्रेन बंदियों की सबसे बड़ी अदला बदली पर सहमत हुए और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा दोहा में पहली डायमंड लीग मीट में खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।